قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. اے نبی کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھلانے کی کوشش کریں گے وہ جہنم کے ساتھی ہیں. دعا کر لیجیے کہ اللہ ہمیں ایمان کے بد عمل صالح کی توفیق دے، اور کبھی اپنی عزت اور اپنا نام بچانے کے لیے تیرے دین کو نیچا کرنے کی توفیق نہ دینا. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی ایسا رسول نہ بھیجا نہ نبی جس کے سچ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو. جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اسی طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم بھی اور حکیم بھی ہے. نبی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ دین پھیلے، اسلام پھیلے، لوگ اللہ کی کتاب سے جڑے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ نہ ہو. کل بھی یہی تھا، آج بھی ہے. نبی کے دور میں اللہ کے نبی کی تڑپ کے باوجود ہر بندہ دین نہیں سیکھ سکا، تو آج کیسے کوئی سیکھے گا؟ کیونکہ شیطان بیچ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کی ان باتوں سے بچو. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم بھی اور حکیم بھی ہے. اور یہ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ کہ یہ ظالم لوگ دشمنی میں بہت دور نکل گئے، اور علم سے بہرمند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. دعا کریں اللہ میں بھی یہ ساری خوبیاں دے دیں، اور خاص طور پہ ہمارے دل قرآن کے آگے جھک جائیں. جو نہیں جھکتے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں کر دے، ہماری نسلوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں کو، امت مسلمہ کو ان میں شامل کر لے. اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، پھر جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، دعا کیجیے ہمیں ہجرت کی توفیق ملے، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، یہ تو ہے ان کا انجام. اور جو کوئی بدلہ لے لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا بنا دے. آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں. یہ اس لیے کہ رات سے ہی دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہے، وہ سمیع بصیر ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ سب باطل ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی والا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ کہ وہ لطیف و خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے؟ ہر آیت کے بعد کہ جی اللہ ہم سوچتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یہ سب کام آپ ہی کرتے ہیں. اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. لگتا کیا تھا کہ اس کے بعد کیا آئے گا؟ کہ جس کے پاس اتنا کچھ ہے وہ بڑا ظالم اور روب والا اور غصے والا ہے. دنیا میں جس کی اتھارٹی ہوتی ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ سب میں کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. کیا پتا چلا کہ آپ بھی جتنا لوگوں کے نفع کے بنتے جائیں اتنا آپ کے اندر رحیمی آتی جائے اور رفعت آتی جائے. آپ بھی اپنے اندر نرمی پیدا کریں تاکہ آپ دوسروں کو کچھ فائدہ دینا چاہیں. क्योंकि ये भी एक तकब्बुर होता है कि जरा सा किसी के काम के हो गए अश्रु, सर पे आंखें रख ली और किसी से बात करके भी नहीं देते। फिर फरमाया, वही है जिसने तुमको जिंदगी बख्शी, वही तुमको मौत देता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा। यानी तुम तो जीने और मरने के लिए उसके मुख्ताज हो, तुम उसे बेनियाज कैसे रह सकते हो। सच ये कि इंसान बड़ा ही मुनकिरे हक है। सोचिए, हाय, हक का इनकार करता है इंसान, मैं हक का इनकार करती हूँ। हर उम्मत के लिए हमने एक तरीका इबादत मुकर्रर की है जिसकी वो पैरवी करती है। पस से नबी, वो इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें, तुम अपने रब की तरफ दावत दो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर वो तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह कयामत के रोज तुम्हारे दरमियान इन सब बातों का फैसला करेगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह के इल्म में है? सब कुछ एक किताब में दर्ज है। अल्लाह के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं। सोचिए जरा चंद सेकंड के लिए। ये लोग जो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं, जिनके लिए ना तो इसने कोई सनत नाजिल की और ना ये खुद इनके बारे में कोई इल्म रखते हैं, इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। इनको जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि मुनकरीने हक के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी वो इन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। इनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें इससे बरतर चीज क्या है? अन्नार। हाईलाइट कीजिएगा सिर्फ इतने लफ्ज को, अन्नार, आग। वादहल्लाहुल्लज़ीना कफरू वबिसल मसीर। अल्लाह ने इसी का वादा इन लोगों के हक में कर रखा है जो कबूले हक से इनकार करें, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी जो अल्लाह को झुटलाते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, उनका नसीब सिर्फ आग ही है। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। इसके बाद बड़ी खूबसूरत मिसाल है शिर्क और तौहीद के फर्क को समझने की। या अय्युहन्नास उदुरी बमसलुम फस्तमीउ लहू। लोगों, एक मिसाल दी जा रही है, गौर से सुनो। ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह तआला कह रहे हैं, क्योंकि समिया होता सुनना और इस्तमिया गौर से सुनना। जिन माबूदों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले जाती है तो वो इसे भी छुड़ा नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर हैं और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमजोर हैं। तो शिर्क होता क्यों है? मा कदरुल्लाह हक कदरी। लोगों ने अल्लाह की वो कदर ही ना पहचानी जो कि उसकी कदर का हक था। क्यों, कैसे, अल्लाह की क्या शान है? इन्नल्लाह लकवीयुन अजीज। वाक्य ये कि अल्लाह कुव्वत और इज्जत वाला है। शिर्क करने वाला शख्स ना शुक्रा शख्स, बेकदरा शख्स ही अल्लाह को छोड़कर किसी और दर पे जाएगा। सच है कि झूठ है? इतनी करनी वाला जो दिन रात हमारे काम कर रहे हैं, हम उसको छोड़कर किधर जाते हैं? खबरों पे। और ये मिसाल है मक्खी का जिक्र, जिसको सुनकर मक्का में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, तो आयतें नाजिल हो गई थी कि इन्नल्लाह, कि तुम मक्खी की बात करते हो तो फिर बड़ी है, मैं तो मच्छर की बात करते हुए नहीं शर्माता। और मक्खी जब चीज ले जाती है तो इंसान के बस में नहीं रहती। आप देखिए कहाँ मक्खी बैठे कि आपको कुछ नहीं पता। और ये भी अल्लाह की कुदरत का एक नमूना है। 500 आंखें होती है मक्खी की। इसके सर के ऊपर अल्लाह ने वो जो काली सी कलगी है ना, वो छोटे छोटे लेंजेज है। किसी ने कहा क्या फायदा हुआ 500 आंखों का, बैठती फिर गंदगी पे ही है। लेकिन हकीकत है कि मक्खी भी अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है। तो मुशरिक जो है ना, वो गंदगी पे बैठने वाला शख्स है। अल्लाह हमें उससे बचाए। अब आखिरी आयतें जो आज की आयतें तदब्बुर भी हैं, इंशाल्लाह आपको इसकी तफसीर क्या, इस पे तर्स बहुत ही है। मुझे एक दो याद भी हैं, अगर आप बाद में रब्ता करें तो हम इनको वो तर्स भेजते हैं। यानी खून को गर्म कर देने वाली आयतें। अब इतना वक्त नहीं है कि हम गर्म हो सके, लेकिन हम इसका खुलासा करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुर्कउ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम वफ़्फ़लुल ख़ैर। हकीकत ये है कि अल्लाह अपने फरामीन को भेजने के लिए मलाइका में से भी पैगाम रसा मुंतखब करता है और इंसानों में से भी। फरिश्तों में उसने किसको चुना? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। और इंसानों में किसको चुना? अंबिया को। और अंबिया के बाद किसको चुना? मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं समझी आप इसके जवाब में कहेंगी मुझे चुना। आप अपना नाम लिखें, यह आपकी बात है, दोबारा पढ़ती हूँ, अब गौर से सुनिएगा। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास। हकीकत यह कि अल्लाह अपने फरामीन को भेजने के लिए फरिश्तों में से भी पैगाम देने वालों को चुनता है और इंसानों में से भी। वो समी और बसीर है, जो कुछ भी लोगों के सामने इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इनसे ओझल है इससे भी वो वाकिफ है, और सारे मामले अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। अल्लाह की बड़ी शान है कि लोगों को अपना पैगाम देने लेने के लिए चुन ले, चाहे बोल के दें, चाहे बोला व सुनवा कर दें, चाहे मैनेजमेंट में बैठ जाएं, टेक्निकल पे बैठ जाएं, अपने लिए दुआ कर लें कि अल्लाह तो मुझे भी चुन ले। अल्लाह अपने पैगाम को आम लोगों को नहीं देता। क्या आप किसी राह जाते को मैसेज देते हैं कि जरा ये जाके आगे मैसेज दे दो, पता चला वहां जाके मैसेज कुछ और का कुछ बना हुआ है। आप भी बड़े बादशूर बच्चे, समझदार इंसान को कहते हैं ये बात कही है, जाओ वहां ये ऑफिस में मैसेज देकर आओ। अल्लाह कच्चे लोगों से अपना पैगाम नहीं दिलवाएगा। अभी ऊपर फर्द की बात थी, यहां आप खुद थे, अब एक उम्मत की बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल ख़ैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो, अपने रब की बंदगी करो और नेक काम करो, इसी से तवक्को की जाती है कि तुमको फलाह नसीब होगी। बहुत सारे लोग यहीं रुक गए, कहते अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पूरी, बाकी कजा पढ़ ली, कजा उमरियों की सूरत में माशाल्लाह, रुकू पूरे, सजदे पूरे, इबादत पूरी, और खैर के नाम पे सदका भी करते हैं, दैट्स इट। हालांकि आप देखिए आयत आगे अलग शुरू हो रही है, हालांकि उसको इसमें डाला जा सकता था, लेकिन यहां तक है इनफिरादी इबादत, इसमें बहुत नंबर आएंगे लोगों के इंशाल्लाह। आज भी मुसलमानों की इंडिविजुअल वर्शिप बहुत ज्यादा है, 8 से 20 भी तरावी पढ़ते हैं फिर नहीं थकते, अल्हम्दुलिल्लाह। हज भी करते हैं, उमरा भी करते हैं, फर्ज भी किए, नफलें भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन जिस चीज के नंबर आज उम्मत के कटे हुए हैं वो है वजाहिदु फिल्लाहि हक्क जिहादिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करो, मेहनत करो, कोशिश करो, जैसा कि जिहाद का हक है। क्यों भाई, हम क्यों करें? हो वज्तबाकुम, इसलिए कि उसने तुमको चुन लिया, ही हैज चोजन यू। ऊपर लफ्ज देखिए यस्तफीदा, सफिया नाम आपने उर्दू में सुना होगा, चुनना, चुनाव। यहाँ इज्तबा, मुज्तबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है, मुस्तफा, मुज्तबा, चुना हुआ शख्स, वही नाम आपको मिल रहा है। चूज और सिलेक्ट का फर्क पीछे बता चुकी हूँ, वही यहाँ है, अल्लाह ने आपको सिलेक्ट किया, विक्ट्री स्टैंड पे उम्मते मुस्लिमा आपको खड़ा कर दिया, और डरो नहीं, वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, इसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया और दीन में तुम पर कोई तंगी कायम नहीं की। क्या करो, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर, अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम क्या रखा। अब इसको सुनिए और दुआ करें अल्लाह फिरकों वाले नामों से हमें तो कम अज कम आजाद कर दे, दूसरों की तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम कुरान में देखिए ये तीसरा मुकाम आ रहा है जहां लफ्ज मुस्लिम आपके मेरे लिए आ रहा है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इसने पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, मिन कबलु वफी हाजा, और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है, भेजा क्यों दुनिया में, नमाजें पढ़ने रोजे रखने नहीं, लियकुना रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो, किस बात के, हक के, शहादते हक की गवाही देने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको चुना। दूसरे पारे की पहली आयतें, वकजालिक जालनाकुम उम्मतन वसतल लितकून शुहदा अलन्नास, एक ईमान वाला जिंदगी भर लोगों पर हक बात का गवाह बनता है, अल्लाह मौत देकर उसको फिर शहादत की मौत देता है। जिंदगी में शहादत होगी ना हक की, तो मौत शहादत की होगी, चाहे घर के बिस्तर पे मरेंगे। सारी जिंदगी अल्लाह के दीन को फैलाने प्रमोट करने में गुजारिए, अल्लाह आपकी मौत शहादत की मौत कर देगा। कहा इसीलिए फरमाया, अब करो क्या, फाकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वातुस्ज़कात वातसिमू बिल्लाह, बस नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को मजबूती से थाम लो। ये कौन से मजबूती से थामना, किसी खुशी गम दुख सुख में रब ना छूटे, ऐसा थाम लो कि बस फिर किसी को न थामने की जरूरत पड़े, क्योंकि हुआ मौला कुम, वो तुम्हारा मौला है। फने मल मौला व ने मन नसीर, और वो कितना अच्छा है दोस्त और कितना अच्छा है मददगार। बहुत खूबसूरत आयत है। अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को उनकी औकात याद दिला दी। खुशियां मनाओ, तुम्हारा चुनाव हो गया, तुम रिसालत की कड़ी में एक तीसरे लिंक के तौर पे जोड़े गए हो। पहले क्या था? फरिश्ता, और फिर रसूल और इंसान। आज क्या है? फरिश्ता जिब्राइल, रसूल मोहम्मद सल्लम, तीसरा लिंक मेरा और आपका जोड़ दिया, उम्मत मुस्लिम और उम्मत बसत का। अगर हमें अपनी ये शान नजर आ जाए ना, तो याद रखिए फिर हम कभी काम ढीले नहीं करेंगे। जिसको ये मुकाम याद रहा, वो काम वही करेगा। पीछे रहेंगे तो गंदगी दूर नहीं होगी। दुआ कीजिए कि हम इस पे कोशिश कर लें। इनफरादी इबादत उम्मतों को नहीं बचाती। असल बात यह कि हमारा आपका काम दूसरों से मुख्तलिफ है। हम सोचते हैं जो दूसरे हैं बस हम उसी तरह के लोग हैं, तो नहीं। हुवज तबाह कुम, तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया। वो कहते हैं ना कि तू क्या सिकवा में मगरिब पर न कर, के खास है तरकीब में कौम हाशमी। ये जो रसूलुल्लाह की कौम है ना, इसका मिजाज आम लोगों से बड़ा फर्क है। इसलिए मुझे और आपको कोशिश करना है। अल्लाह को पार्ट टाइम मुस्लिम नहीं चाहिए। अल्लाह को सिर्फ इबादत करने लिए मुस्लिम नहीं चाहिए, वो तो फरिश्ते भी बहुत हैं। अल्लाह मक्का से निकालकर मदीना में क्यों लाया? मक्का में बातें करते रहते। मदीना में इसलिए लाया कि अल्लाह के रास्ते में अटमोस्ट कोशिश करो। ईस्ट में रहो, वेस्ट में रहो, जिधर जाओ जो करो, दुनिया अच्छा के तो भी करो, दुनिया बुरा के तो भी करो, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का हाल देखकर रोना आता है। अल्लाह हम सब की इस्लाह कर दे। वो मौलाना अली ने कहा कि जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। कैसी जज्बे के साथ इस दीन का आगाज हुआ था, ऐसे इस्लाम फैल रहा था चारों तरफ, और आज हाल क्या कि अपने ही लोगों में हम अजनबी। आज दीन यतीम बच्चे की तरह गिरा पड़ा, और हम इंतजार करें कोई हमें कहे तो हम करें। कहा ही नहीं तो मैंने किया ही नहीं। बच्चा गिरे तो माँ को कोई मैसेज भेजता है, कोई उसको थैंक्स टू डू भेजता है कि आपने गिरते बच्चे को भी उठाना है। माँ तो बेसोचे समझे उठ के भाग जाती है। जिसके दिल में इस्लाम से मोहब्बत है, वो आज इस्लाम के लिए जरूर उठेगा। वी कैन बी अवर ओन जज, वी नो वट वी आर गोइंग टू डू। हमारी इफ्तारियां, हमारी नमाजें हमें कभी इस्लाम को नहीं पढ़ाएंगी जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे। दुआ कीजिए कि आज अल्लाह हमसे भी खिदमत ले लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।